காலம் இணவோ ஆயிரே ஆணம் இணமோ ஆயாணம் ஊனம் மோஷ்யமார்க்கேதாரம் நேதாரம் கர்ம பூவ்ரதாம் ஜ்யாதாரம் தத்வானாம் வந்தே சத்குருலோகே வந்தே சத்குருலோகே. சத்வாத்புத்திர மகான் சாஸ்திர இஸ் மகான் கிரந்த கே பாஞ்சவே அத்தியாய கோ ஆதார பனாக்கர் குச்ச திரவியோ கே சந்தர்ப மே சர்ச்சா ஹம் ஆப் லோக் யஹா கர் ரஹே தே. திரவ்ய க்யா சீஜ் ஹோதி ஹை, திரவ்ய க்யா ஹோதா ஹை, திரவியோ கி சர்ச்சா ஹை நா. யே மூல மே அஜீவ் தத்வ கி சர்ச்சா ஹை. ये तो हम सब जानते ही हैं कि ये सत्वार्थ सूत्र महान शास्त्र ये सात तत्वों में इसका विस्तार है, सात तत्वों का विस्तार है. इसके दस अध्याय, शुरू के चार अध्याय जीव तत्व का वर्णन करने के लिए, फिर पांचवा अध्याय अजीव तत्व का वर्णन करने के लिए, छठा और सातवां अध्याय आश्रम तत्व के वर्णन के लिए, आठवां अध्याय बंध तत्व का वर्णन, नौवें अध्याय में संवर और निर्जरा दोनों का वर्णन, और दसवें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है. पिछले वर्ष तक जो चार अध्याय हुए थे उनमें जीव तत्व की चर्चा हुई. यहाँ जो पांचवा अध्याय चल रहा है इसमें अजीव तत्व का वर्णन है. मूल चर्चा है अजीव तत्व की, ध्यान देना, मूल में चर्चा है अजीव तत्व की, और वर्णन है छह द्रव्यों का. तो अजीव तत्व में पांच द्रव्य शामिल होते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल. ये पांच द्रव्य अजीव तत्व में शामिल हैं. तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि यदि ऐसा है तो फिर जीव को क्यों शामिल किया उसने, जीव को क्यों जोड़ा है उसने. तो कहा जब पांच द्रव्य का वर्णन कर रहे थे उनके बारे में जो जो बातें बताई गई फिर जीव के बारे में वैसी ही बातें कर दी गई. द्रव्य छह हैं, कल नाम याद कराए थे आप लोगों को, विस्तार से चर्चा हुई थी कल दो सेशन में अपनी. छह द्रव्यों के स्वरूप की भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी और कुछ चर्चा इनको जानने के प्रयोजन की हुई. आखिर छह द्रव्यों को जानने से लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि हमें पता लगता है कि इन छह द्रव्यों में से मैं कौन हूँ. जब हमें इस बात का निर्णय हो गया कि इन छह द्रव्यों में से मैं तो जीव तत्व हूँ, जीव हूँ मैं, तो इसका मतलब है कि मैं पुद्गल नहीं हूँ. क्या अर्थ? मैं धर्म अधर्म आकाश काल नहीं हूँ. आपको निर्णय है इस बात का? इसका भरोसा कितना महत्वपूर्ण है आपने कल्पना की कभी? मैं पुद्गल नहीं हूँ और जो दिखाई देता है वो सब पुद्गल होता है. इसका मतलब आईने के सामने खड़े होने पर जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ. मिरर में देखने पर जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ. मैं उससे कोई भिन्न तत्व हूँ, मैं उससे कोई न्यारा तत्व हूँ. समझ में आ रही है बात? माने पुद्गल अलग और जीव अलग, और मैं जीव हूँ और शरीर पुद्गल है. अब पुद्गल में क्या क्या बातें शामिल होती है, इसके अलावा धर्म द्रव्य में क्या बातें शामिल होगी, अधर्म द्रव्य में क्या बातें लागू होगी, आकाश में क्या है और काल में क्या है, ये सब बातें इन्होंने यहाँ इस तत्वार सूत्र के पांचवें अध्याय में बातें की है. कल हमने कुछ सूत्र पढ़े थे जिनमें इनकी कुछ परिभाषाएं बतलाने का प्रयास किया, फिर इनके प्रदेश बताना शुरू किया, एरिया बताना शुरू किया, जीव कितने एरिया में रहता है, धर्म अधर्म आकाश काल कितने कितने एरिया में रहते हैं। तो देखिए एक सूत्र दिया इसमें, सबसे पहले तो संख्या बताई, आ आकाशात एक द्रव्याणी, छह नंबर का सूत्र है। सूत्र क्या है? आ आकाशात एक द्रव्याणी, बोलिए। आ मतलब होता है मर्यादा, आकाशात आकाश तक के, एक द्रव्याणी, एक है संख्या, माने छह द्रव्यों के नाम क्रम से बताओ। क्रम से नाम बोल सकते हैं छह द्रव्यों के? आकाश और काल, बहुत अच्छा सतीश भाई, याद हो गया बिल्कुल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्यों के नाम क्रम से हैं। लेकिन भाई साहब ये क्रम कहाँ से लगा लिया आपने? ये तो क्रम नहीं, नहीं यही क्रम है। हम दिखा सकते हैं, शास्त्रों में लिखा है, पाठमालाओं में लिखा है, बच्चों की किताबों में लिखा है, छह द्रव्यों के नाम तो इसी क्रम से है। ऐसा नहीं है, इस लोक में जीव सबसे पहले कहाँ से आ गया भाई साहब? तुमने नाम लिखे तो अपना नाम सबसे पहले लिख दिया। छह द्रव्यों के नाम किसने लिखे? आकाश ने। जीव सबसे पहले रख दिया तुमने, और तुम्हारा जो निकट का संबंधी था उसको सेकंड नंबर पर दे दिया। उद्गल, ये क्या चक्कर है? उमा स्वामी आचार्य को ये बात बर्दाश्त नहीं है। जब इन्होंने छह नंबर का सूत्र दिया जो भी हमने पढ़ा, आ आकाशाद एक द्रव्याणी, किसी भी संस्कृत जानने वाले व्यक्ति से इस सूत्र का अर्थ करवाइए। क्या महेंद्र भाई, जो जैन नहीं हूं, जिसने जैन रिलीजन, जैन फिलोसॉफी को पढ़ा नहीं हूं, नहीं जानता हूं, उसके पास जाकर इस सूत्र का अर्थ कराओ। अर्थित भाई, तो अर्थ क्या निकालेगा वो? आकाश तक जितने द्रव्य हैं, उन सब की संख्या एक 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 है। अब इसका अर्थ क्रम से लगाओगे तो आप समझोगे जीव एक ही है, उद्गल भी एक ही है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, ये सब एक एक है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र तो ये लिखा है, फिर अर्थ का क्या करें हम? जब ये सूत्र लिखा है तो अब अर्थ का क्या होगा? नहीं, तत्व की बात नहीं है यहाँ। तो ये कह रहे हैं पहले सूत्र में है, क्योंकि देखो उमा स्वामी आचार्य के सामने जो शिष्य बैठा है ना, उसको छह द्रव्य के नाम नहीं पता, उसने कभी पहले छह द्रव्य पढ़े नहीं है। तो उमा स्वामी आचार्य ने जिस क्रम से बताए हैं उसी क्रम से तो याद करेगा बेचारा? उमा स्वामी आचार्य ने क्रम क्या बताया? पहला सूत्र देखो, धर्म अधर्म आकाश, धर्म अधर्म आकाश, पुद्गल, फिर जीव, ये क्रम दिया है उन्होंने। क्रम से बोलने के लिए भी उमा स्वामी आचार्य कहे तो शिष्य क्या बोलेगा? पहले सूत्र के आधार पर बोलेगा धर्म अधर्म आकाश उद्गल फिर जीव और फिर आगे चल के कहेगा काल। इतनी बात कहेगा, ये क्रम कहेगा। इनमें क्रम में आकाश तक के द्रव्य एक हैं, इसका मतलब धर्म अधर्म और आकाश ये एक एक है। संख्या याद रखनी है अपने को। धर्म द्रव्य अकेला है, एक ही है पूरे विश्व में। अधर्म द्रव्य भी पूरे विश्व में एक ही है, आकाश द्रव्य भी पूरे विश्व में एक ही है, दो नहीं है, टुकड़े नहीं है उन द्रव्यों के, द्रव्यों के टुकड़े भी नहीं है और विभाजन भी नहीं है, अखंड एक द्रव्य है ये तीनों। तो ये अर्थ हो गया इस 6 नंबर के सूत्र का। निष्क्रियाणी कहकर के कह दिया, निष्क्रिय ये द्रव्य, क्रिया माने गमन करना, ये गमन नहीं करते, आकाश जैसा का जैसा ही रहेगा, अनादि अनंत। धर्म द्रव्य भी अनादि अनंत ऐसा ही रहेगा, अधर्म द्रव्य भी अनादि अनंत ऐसा ही रहेगा। अनादि अनंत एक रूप रहने की अपेक्षा से ये बात कह दी। यहाँ फिर इनके प्रदेश बताना शुरू किया, इन्हीं द्रव्यों के एरिया, असंख्य या प्रदेश धर्माधर्मे जीवानाम। धर्म द्रव्य कितने प्रदेश की है, अब पहले प्रदेश समझ लो आप, प्रदेश क्या होता है, प्रदेश किसे कहें हम, किसे कहें प्रदेश, एरिया, एरिया की यूनिट। इतना डिवीजन करते जाएं उसका कि लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाएं, जिससे छोटा और कुछ भी ना हो उसका नाम है प्रदेश। एरिया की सबसे छोटी स्थिति, एरिया की यूनिट वो है प्रदेश। टाइम की यूनिट वो क्या है, वह है समय। द्रव्य की यूनिट यदि बात करें तो एक परमाणु, एक कालाणु सबसे छोटा द्रव्य है, एक परमाणु है, उससे छोटा कोई नहीं है। क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बोलते हैं ना अपन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो द्रव्य सबसे छोटा बोले परमाणु, क्षेत्र सबसे छोटा प्रदेश, काल का सबसे छोटा अंश, काल का सबसे छोटा अंश समय, समय टाइम। भाव का सबसे छोटा अंश क्या है बोलो, ये बात यहां नहीं है, अलग हटके बात कर रहा हूं कुछ। भाव का सबसे छोटा अंश क्या है, वो भाव वो नहीं है, भाव पक्ष में ग्रहण किए जाते हैं गुण, द्रव्य क्षेत्र काल भाव है नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय है, आप जानते हैं गिरीश भाई, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय है, हर वस्तु में द्रव्य क्षेत्र काल भाव लागू होते हैं, हर वस्तु में होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि द्रव्य हो और क्षेत्र नहीं हो। पदार्थ तो है उसका कोई एरिया नहीं है, क्षेत्र हो और काल नहीं हो, काल हो और भाव नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो द्रव्य माने तो द्रव्य, क्षेत्र माने उसका एरिया, काल माने उसका टाइम पीरियड, और भाव माने उसके गुण। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भाव शब्द के अंतर्गत गुण लिए जाते हैं, भाव शब्द का अर्थ गुण है, समझ में आ रही है बात, गुण। अब गुण का सबसे छोटा अंश क्या होगा, द्रव्य सबसे छोटा क्या बताया, द्रव्य सबसे छोटा याद रखना चाहिए, परमाणु। क्षेत्र सबसे छोटा मुकुंद भाई, काल सबसे छोटा प्रणेश भाई, समय काल का सबसे छोटा है हिस्सा, और भाव का सबसे छोटा हिस्सा क्या है, गुण नहीं, भाव मतलब तो गुण है। अब सबसे छोटा अंश कहलाता है अविभागी प्रतिच्छेद, अविभागी प्रतिच्छेद अलग टेक्निकल वर्ड है, अविभागी प्रतिच्छेद ये क्या होता है, ये उसका सूक्ष्म अंश है, गुणों के परिणमन के सूक्ष्म अंश का नाम है अविभागी प्रतिच्छेद। कुछ अलग अच्छी चर्चा है, अभी समय नहीं है हमारे पास में वो बतलाने के लिए, लेकिन शक्ति के अंश अविभाजी प्रतिच्छेद क्या होते, शक्ति के अंश, गुण का अंश वो है अविभाजी प्रतिच्छेद। इससे फर्क नहीं पड़ता कितने क्षेत्र में है, अविभाजी प्रतिच्छेदों से निर्भर करती है वस्तु की पावर, कितनी पावर है। जैसे एक दवाई की गोली 25 mg की और एक दवाई की गोली 1000 mg की, तो दोनों में कितना फर्क है?
पावर
में बहुत फर्क है ना,
पोजीशन में,
और क्वांटिटी सेम, क्वालिटी सेम, साइज सेम, शेप भी सेम और कलर भी सेम, उसके बावजूद भी काई का फर्क है डॉक्टर साहब? सतीश भाई, उसमें किस चीज का फर्क है? पावर का फर्क है। माने 25 mg और 1000 mg में पावर का फर्क है, वही समझ रहे हैं आप? देखो दोनों हाथ पर रख करके, आपको कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, लेकिन फर्क है उसमें, उसके अंदर में कितनी चीज है। छोटा सा बारूद, इतना सा बारूद का अंश और विस्फोट कितना करेगा, वो उसकी पावर, वो कहलाते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। एक घंटे का मेरा पूरा प्रवचन है, एक घंटे का अविभागी प्रतिच्छेद नाम से ही यूट्यूब पर है उपलब्ध। आप संजीव गोदर डालें, उसमें सर्च करने में आपको मिलेगा विशिष्ट प्रवचनों नामक फोल्डर में, प्ले लिस्ट में। अदरवाइज आप डायरेक्ट अविभागी प्रतिच्छेद डाल दो तो प्रवचन ही वही आएगा, क्योंकि दुनिया में किसी ने कभी उस पर प्रवचन किया ही नहीं मेरे अलावा। टॉपिक ही ऐसा है, अलग अटके कुछ टॉपिक इसी तरह के हैं जो मेरे अलावा किसी के लिए, जैसा समुद्र घास ऐसे स्पेशल टॉपिक है कि भाव की चर्चा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ, ये प्रदेश, ये क्षेत्र की चर्चा है। हर वस्तु में होंगी ये चार चीजें, चार में से एक भी मिस कर दोगे तो काम नहीं चलेगा। इसको हम चार प्रश्न बना करके इन बातों का जवाब देते हैं, कौन कहां कब कैसे। सुना आपने क्या कहा? कौन कहां कब और कैसे, चार बातें कह दी हमने। कौन द्रव्य, कौन का जवाब क्या होगा द्रव्य, कहां का जवाब क्या होगा क्षेत्र, कब काल और कैसे भाव। कौन कहां कब कैसे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इन चार में से एक भी चीज माइनस कर दो तो कुछ स्वरूप ही बिगड़ जाता है, संभव ही नहीं है, असंभव हो जाती है वो बात इन चार में से एक भी माइनस कर दो तो। हमने कहा भाई साहब वो आ रहे हैं तो आप क्या कहोगे, कौन आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कब आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, चार बातों का जवाब चाहिए। चार में से यदि आपको एक भी जवाब नहीं मिला ना तो आपकी शंका का समाधान नहीं होगा। हमने आपसे कहा सतीश भाई वो आपसे मिलना चाहते हैं, मैंने कौन, पहला प्रश्न होगा आपका कौन, मैंने कहा ट्रंप, ट्रंप कैसे हो सकता है, क्यों मिलना चाहते हैं मेरे से? नहीं, आप अच्छे डॉक्टर हो और उनको पता लगा है आपके बारे में, तो उनको कुछ अपना बात करना है सर्जरी के बारे में, इसलिए मिलना चाहते हैं। तो कब मिलना चाहते हैं, कौन कहां कब और कैसे, ये चार बातें होगी, कैसे या क्यों। आप देखिए इन चारों में से जैसे मान लो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं, द्रव्य ही नहीं हो, कौन का ही जवाब नहीं मिले तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। जिसकी बात चल रही है उसका अस्तित्व तो होना चाहिए, उसकी मौजूदगी तो होना चाहिए। हमने कहा वो मिलना चाहते हैं, बोले कौन, तो जवाब में आप कोई व्यक्ति ये कहे बंध्यासुत, बंध्यासुत जानते, बंध्यासुत बांझ का बेटा, बांझ जो जन्म नहीं दे सकती किसी बालक को, उनका बेटा वो आपसे मिलना चाहता है। तो आप क्या कहोगे, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, दुनिया में अस्तित्व नहीं है उसका, वंध्यासुत तो काल्पनिक बात है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो कैसे मिलने की बात हो सकती है। तो फिर हमने ये कहा कि नहीं, अस्तित्व चाहिए माने द्रव्य होना चाहिए। तो द्रव्य से हमने जवाब दिया, तो द्रव्य से हमने जवाब दिया तो हमने कहा सुनो, सीमंदर भगवान मिलना चाहते हैं तुमसे, उनका तो अस्तित्व है ना, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो आप क्या कहोगे, द्रव्य से अस्तित्व तो है लेकिन क्षेत्र से कहाँ है भाई साहब, वो कौन से क्षेत्र में, हम कौन से क्षेत्र में, क्षेत्र भी तो ये होना चाहिए। और कदाचित क्षेत्र के बारे में भी कह दिया जाए, बोलो, जिनका अस्तित्व भी हो क्षेत्र भी हो, और यदि कदाचित ये कहा जाए कि आचार्य कुंद कुंद तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम क्या कहोगे, वो तो भरत क्षेत्र के ही है। अब भी कोई ऐतराज है क्या, इन्हें ऐतराज नहीं है, लेकिन इस काल में कहाँ है, वो तो 2000 साल पहले हुए हैं, इस काल में कहाँ है, वो काल भी चाहिए और इतना ही नहीं भाव भी चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति जिसका अस्तित्व भी है, इसी क्षेत्र में भी है, इसी काल में भी है, का नरेंद्र मोदी मिलना चाहता है, तो फिर आप प्रश्न करोगे क्यों मिलना चाहता है, हमसे कैसे मिलना चाहता है। चार का जवाब आए बिना काम नहीं चलता है, लिख करके देखो, एक एक को हटा के देखो, तो आपको लगेगा क्या स्वरूप बनता है। बताओ, नरेंद्र भाई ने मेल भेजा आपको, उस मेल में चार बातें लिखी होगी, क्या चार बातें लिखी होगी, सबसे पहला द्रव्य, फिर क्षेत्र, द्रव्य माने कौन आ रहा है, फिर क्षेत्र कहाँ आ रहे हैं कि कब आ रहे हैं और किस क्या सब्जेक्ट लेंगे कि किस प्रयोजन से आ रहे हैं। चार में से एक माइनस कर दो, आपके यहाँ निमंत्रण पत्र आते होंगे शादी विवाह के, आते हरी में आते हैं, आते गिरी में है, आपके लिए आते हैं निमंत्रण पत्र, इन्विटेशन लेटर आते हैं, तो उनमें चार बातें होती होगी। कोई व्यक्ति पर्सनल देने के लिए आया आपके घर से और कहा कि भाई ये हमारे बेटे की शादी है और आपको आना है, ये इन्विटेशन लेटर है, ठीक है, उसने दिया, हमने कहा जरूर आएंगे। उनके निकलने से पहले ही चांस की बात है, हमने उस इन्विटेशन लेटर को खोला और खोल करके देखा तो उसमें डेट मिस थी, टाइम नहीं था उसमें, माने काल नहीं था उसमें, जब उसमें समय ही नहीं था, डेट ही नहीं थी, तो हमने पूछ लिया भाई साहब इसमें तारीख तो है ही नहीं, कब आना है। अरे गिरीश भाई क्या बात कर रहे हो, क्या आपके लिए भी समय, जब आओ तब, तारीख की क्या जरूरत है, समय की क्या बात है, कितना जरूरी है समय, समय नहीं हो तो क्या होगा बोलो, उस निमंत्रण पत्र की, उस इनविटेशन लेटर की क्या कीमत है जिसमें टाइम नहीं है, बताओ चलेगा काम, नहीं चलेगा, चलो कोई बात तो नहीं, टाइम तो लिखा था उसमें लेकिन डेट नहीं लिखी थी, डेट तो थी जगह नहीं लिखी थी, समझ आ रही है बात, इतनी तारीख को इतने बजे डिनर है कि लंच है वो उसने लिखा था लेकिन जगह नहीं लिखी है कहाँ आना है, अब क्या होगा बोलो, आना कहाँ है, जगह तो लिखी नहीं है इसमें, आपने यार गजब करते हो यार, आप जहाँ कहोगे वहाँ, हाँ तो जगह की क्या बात है, हाँ तो आप बताओ आप कौन सी जगह खाना चाहोगे, वहीं जहाँ आप कहोगे वहीं रख लेंगे, ऐसा चल सकता है। और कदाचित उसमें नाम छपना भूल जाए, शादी है और नाम छपना भूल गया उसने, आप क्या कहोगे, अरे है किसके, अरे यार गजब कर रहे हो, कितने कमारे लोग हैं, किसी को भी बिठा देंगे, और नाम भी है और सब कुछ है, डेट भी है और समय भी है और स्थान भी है और भाव नहीं है, माने प्रयोजन नहीं है, शादी है, बर्थडे है, जन्मोत्सव है, किस चीज का फंक्शन है, नहीं घर का इनॉग्रेशन है, अगर किस चीज का है, वो भाव में है, ये चारों चीजें कंपलसरी होती है। आत्मा की चर्चा करनी है, अपने आप को समझना है, मैं द्रव्य हूँ, मैं कौन हूँ, द्रव्य, क्षेत्र क्या है मेरा, मिलूंगा कहाँ ये बताओ, ये आत्मा कहाँ मिलेगा, आत्मा कहाँ मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा बताओ? आत्मा को कहाँ ढूंढे अपन? लोकाकाश में? हाँ है तो लोक में, अलोक में तो नहीं है, लेकिन लोक तो बहुत बड़ा है, लोक में कहाँ मिलेगा? लोक तो बहुत बड़ा है, है? सिद्धि चला में आई चली गई, लेकिन वो दूसरे के आत्मा को थोड़ी ही देखना है, तो अपने आत्मा को तो कहाँ मिलेगा? ढूंढते जाओ, अंदर अंदर आते जाओ। ऐसी चर्चा उठाई, मेरे ख्याल से शायद भगवती सूत्र में है या नंदी सूत्र में है ऐसी चर्चा, आत्मा कहाँ है? तो जवाब दिया लोकाकाश में। फिर पूछा लोकाकाश तो 343 धनराजु का है, उसमें कहाँ है? तो बोले मनुष्य मध्य लोक में। बोले मध्य लोक तो बहुत बड़ा है, असंख्यात योजनों का है, उसमें कहाँ है? बोले ढाई दीप में। फिर ढाई दीप तो 43 लाख योजन है, उसमें कहाँ तलाशेंगे हम? भरत क्षेत्र में है, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में है। बोले उसमें आर्यखंड में। आर्यखंड में कहाँ? अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ? फ्लोरिडा में, मायामी में। और कहाँ? घर का पता बता दिया कि इस घर में। उस घर में कहाँ? तो रूम बता दिया, इस रूम में। तो उस रूम में देखा, तो उस रूम में भी नहीं है, तो फिर कहाँ है? उस रूम में भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें कहाँ है? रूम में? बोले एक बेड पर। तो बेड पे कहाँ है? कि शरीर में। तो जवाब दिया उसने। बोले शरीर में यहाँ तक ले जाने के बाद में फिर एक फाइनल जवाब दिया कि शरीर में कहाँ है? शरीर में भी यदि देखो तो हवा ही हवा दिखती है। यहाँ से एंडोस्कोपी करते हैं ना, तो क्या करते हैं? कैमरा डाल देते हैं, यहाँ से अंदर चला जाता है। तो जो कैमरा एंडोस्कोपी में अंदर जाता है शरीर के अंदर, तो वो आत्मा की फोटो खींच के लाता होगा कि नहीं? नहीं हो सकता है, शरीर के अंदर है ना। तो शरीर के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ रहता है एक्चुअल में, कहाँ तलाशे हैं? तो फिर जवाब दिया अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है, अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है। इसका उल्लंघन करके नहीं कहीं भी, असंख्यात प्रदेशों के बाहर नहीं रहता है। इसका मतलब जीव के कितने प्रदेश हैं? तो इन्होंने कहा धर्मा धर्मेक जीवानाम, ये सूत्र पढ़ा था ना अभी अपन ने, असंख्या प्रदेश, असंख्या माने असंख्यात, प्रदेश माने प्रदेश, धर्म अधर्म और एक जीवानाम। धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश है, और एक जीव के लिए असंख्यात प्रदेश है। माने मिनिमम जीव को रहने के लिए असंख्यात प्रदेश चाहिए, मिनिमम एरिया जीव असंख्यात प्रदेशों में रहता है, अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है। आकाश, आकाश कितना बड़ा है? पूरे आकाश सबसे अनंत का, आकाश के अनंत प्रदेश है। आप इसकी चार्ट बनाइए, इनके आधार पर जीव कुदगल धर्म धर्म आकाश का 6 द्रव्य लीजिए, इन 6 द्रव्यों की एक ऊपर लिखिए संख्या, तो फिर सबकी संख्या बतानी है हमारे को। क्या ऐसा कर सकते हैं, 6 द्रव्यों की पहले परिभाषा, तो स्वरूप बताया, फिर लिखी 6 द्रव्यों की संख्या कितने कितने हैं, फिर 6 द्रव्यों के प्रदेश वो कितने कितने हैं। समझ में आ रही है बस? इस तरह से चार्ट बनाए जा सकते हैं इनके। कभी जीव द्रव्य की चर्चा की, प्रदेश कितने? असंख्यात। धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने? असंख्यात। और असंख्यात किसके प्रदेश हैं? अधर्म द्रव्य के। और आकाश के कितने प्रदेश हैं? अनंत। आकाश से अनंत, आकाश के अनंत प्रदेश है। कालाणु एक प्रदेशी है, इसलिए काल को अप्रदेशी भी कहते हैं, वो एक प्रदेशी है। तो देखिए ये तो बात हो गई इसकी, सिर्फ पुद्गल रह गया अभी। पुद्गल कितना प्रदेशी है, पुद्गल कितना एरिया घेरता है? असंख्यात। संख्यात असंख्यात अनंत। अनंत लो, बहुत सारे जवाब आ गए, अब क्या करें?
कम होगा तो संख्यात होगा और अनंत होगा, लेकिन
तो फिर क्या करें? सूत्र पढ़ो आगे और क्या करें? संख्य असंख्य आज के पुद्गला नाम, संख्य असंख्यात संख्य असंख्य आज के पुद्गला नाम, माने संख्यात प्रदेश भी है असंख्यात प्रदेश भी है। और लास्ट में जो च दिया है ना, इसका अर्थ आचार्यों ने किया है और अनंत भी है, ऐसा अर्थ किया है। पुद्गल संख्यात प्रदेशी भी है, पुद्गल असंख्यात प्रदेशी भी है और पुद्गल अनंत प्रदेशी भी है। क्या बात कर रहे हो आप? अनंत प्रदेशी पुद्गल रहते कहाँ हैं? ये सब कौन सी जगह पर रहते हैं? तो इन्होंने कहा लोका का शेवगा है, 12 नंबर का सूत्र दिया, बीच में एक शॉर्ट छोटा सा सूत्र दिया नाणो, अणु बहुत प्रदेशी नहीं है, अणु एक प्रदेशी है। देखो पुद्गलों की बात कर रहे हैं, वही पुद्गल एक प्रदेशी, वही पुद्गल संख्यात प्रदेशी है। संख्यात माने दो से लेकर के जितनी संख्या हो सकती है उतना। फिर कोई असंख्यात प्रदेशी माने जो अवधि माने पर यह ज्ञान का विषय होगा तो असंख्यात प्रदेशी, और कोई पुद्गल अनंत प्रदेशी। तो बोले अनंत प्रदेशी रहते कहाँ है? बोले लोकाकाश ये बुझा है, लोकाकाश में रहते। ये कैसे पॉसिबल है? लोकाकाश में कैसे रह सकते हैं? ये प्रश्न है अब हमारा। थोड़ा सा टेक्निकल बिंदु है, देखो थोड़ा ध्यान देना क्या कह रहे हैं, विषय थोड़ा सा समझ में आए आपको। ये सारे विषय थोड़े थोड़े से इसमें समझने योग्य है, कोई रोचकता भले ही नहीं हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे को हो। फिर आगे जब इनके उपकारों की चर्चा करेंगे ना अभी थोड़ी देर में अपन, तो उपकारों की चर्चा करते समय फिर प्रयोजन की बात आएगी, फिर थोड़ी सी बात में इंटरेस्ट आएगा। अभी तो समझ रहे हैं भाई कितना कितना है वो, अब हम क्या करें? ये समझ तो लो कितने प्रदेशी है, समझ तो लो उसकी संख्या, अब हमें क्या करना है समझ करके? आप प्रयोजन भूलते हैं, बिना मतलब की बात है। लोग ऐसा कहते हैं, हेलो कहते मिलते मुकुंद भाई, वही कहते हैं यार ये काम क्या पढ़ा रहे हैं यार, ये कार की बातें है, इनसे क्या मतलब है, मन नहीं लग रहा है हमारा। आप रिविजन पूछे उससे क्या हासिल हो जाएगा? पुद्गल कितने कितने प्रदेशी हैं ये जानकर के हमारा कौन सा कल्याण होने वाला है इसमें? कुछ नहीं होता है, तो मत पढ़ो कोई बात नहीं। तो फिर आचार्यों ने ऐसे जवाब दिए बहुत कड़क शब्दों में कि एक बात बता कि ये नहीं पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, यहाँ उपयोग नहीं लगाएगा तो कहाँ लगाएगा? तू कहता है मेरे पास में समय नहीं है यार, मतलब की बात करो, कि बिना मतलब की बातें पढ़ा रहे हो आप हमारे को, इतना कीमती समय निकाल करके यहाँ आए हैं और इन विषयों को पढ़ाने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आचार्य देव कह रहे हैं तू इस टाइम को बचा करके टीवी में लगाएगा, कहाँ लगाएगा बता? तेरे को ये बातें बोझ लग रही है, तुझे ये बातें भार लग रही है, यहाँ से समय बचा करके विषय कषाय में लगाएगा? वहां तो तेरे को बोरियत नहीं होती, रोजाना ऑफिस की टेबल पर जाकर के बैठता है, मेल चेक करता रहता है और दुनिया भर के काम करता रहता है, वहां तो तुझे बोरियत नहीं होती? बिना मतलब की इतनी मेल आ जाती है उनको डिलीट करता रहता है, उसमें तुझे बोरियत नहीं होती? लैपटॉप भर जाता है उसे खाली करता रहता है, उसमें तुझे बोरियत नहीं होती? इधर से उधर फाइलें ट्रांसफर करता रहता है, उसमें तुझे बोरियत नहीं होती? बिना मतलब का काम नहीं है? व्हाट्सएप पर इतने हजारों मैसेज आ जाते हैं उनको डिलीट करता रहता है बैठे बैठे, उसमें तुझे नहीं लगता है मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? फेसबुक के ऊपर चैटिंग करता रहता है उसमें तेरे को टाइम वेस्ट नहीं लगता है? घंटों टीवी के सामने बैठ करके बर्बाद कर देता है सीरियल देखने में, न्यूज देखने में, न्यूज पेपर पढ़ने में, उसमें तुझे बर्बादी नहीं लगती है? यदि तू इस समय को बचाकर अपने आत्मा में लगा रहा हो तो हम तुझे निश्चित तौर पर कहते हैं तू ये मत पढ़। यदि तेरे को ऐसा लगता हो अरे यार इसमें समय वेस्ट हो रहा है, मुझे तो आत्मा में जाना है, तू जा आत्मा में, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर, तेरे लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। लेकिन तू यहां से समय बचा करके खाने में लगाए तो ये नहीं चलेगा। इसलिए भाई साहब जितनी थोड़ी बहुत समय शक्ति उपयोग है इसमें लगाओ। अशुभ नहीं है एक बात समझना, पाप नहीं है एक बात समझना, इसमें उपयोग लगाना पाप से बचाएगा। धर्म तो नहीं है डेफिनेटली, कोई बात नहीं, पुण्य तो है, शुभ भाव तो है, मंद कषाय तो है, विषय कषाय से तो बच रहे हैं, इसलिए बोझ समझ करके नहीं पढ़ना। बातें लिखी आचार्य देव ने, सुनो तुम्हें पसंद नहीं आ रही है इसका मतलब तुम उमा स्वामी आचार्य का अपमान कर रहे हो। हम तो हैं कौन बताओ, हम तो ये छोड़कर के तुम्हें कहानियां सुनाना शुरू कर देंगे, तुम्हें रोचक बातें बताना शुरू कर देंगे, लेकिन हम वो बताएंगे तो तुम्हें उमा स्वामी आचार्य द्वारा कही गई बातें कब समझ में आएगी। तुम्हें ये पसंद न आए तो हम पसंद ना पसंद नहीं है, उमा स्वामी आचार्य ना पसंद है। तुम्हें भी उठने के बाद हमें भी कह दो कि पंडित जी मजा नहीं आया, तो मैं कहूंगा इसमें मेरा था क्या जो मजा नहीं आया, क्या सब बातें तो सूत्र की लिखी हुई थी, तुम्हें क्या मजा नहीं आया तुम्हारे को, इसलिए मजे करो तुम। और मजा बाहर से नहीं आता है भाई साहब, मजा अंदर से आता है। मजे का संबंध बाहर से नहीं होता है, कईयों को आनंद नहीं आता है रमेश भाई, बाहर से आनंद नहीं है। समस्या ये है कि हमने आनंद बाहर से समझ रखा है, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसलिए हमें जितना भी मजा आता है वो इस बात में मजा आता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरी तारीफ करे तो मजा आता है, सामने वाला व्यक्ति मेरी बुराई करे तो मुझे तकलीफ होती है। तुम्हें तकलीफ किस बात की हो रही है कि वो बुराई कर रहा है ना, अरे वो तो बुराई कर रहा है लेकिन तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है ये बताओ कि मेरे बारे में कर रहा है ना, कि पहले निर्णय करो कि मैं कौन हूं, उसके बाद में बात करेंगे तुमसे। जब तुमने निर्णय कर लिया कि मैं आत्मा हूं तो दूसरा व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। एक लड़का अपने घर पर विंडो से नीचे देख रहा था, झांक रहा था, तो सामने की रोड क्रॉस करके एक दूसरी बिल्डिंग में से एक दूसरा लड़का वो ऐसे कर रहा था, सबको देख करके अभी बहुत दुखी था। मैं जब भी देखता हूँ कि ऐसे करता रहता है, ऐसे अंगूठा दिखाता रहता है, बहुत परेशान है। अब क्या करें बोलो उसकी परेशानी दूर करने के लिए, क्या करें किस बात से परेशान है, अंगूठा दिखा रहा है, ठेंगा दिखा रहा है, क्या कहते हैं इसको, इससे परेशान है। उसने क्या किया, खुद से जाकर के कही कि भैया और हमारे भाई साहब थोड़े परेशान हो जाते हैं, तो मैं समझ किया करो तुम क्यों करते रहते हो। सर मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया। बोले नहीं तुम ये क्यों करते हो, ऐसे 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 क्यों कर रहे हो, अंगूठा क्यों दिखा रहे हो उनको। तो मेरा अंगूठा मैं कुछ भी करूं, ये क्यों दुखी हो रहे हैं, दुख का कारण क्या है मुझे तो ये बतलाइए आप। दुख का कारण है सामने वाले से प्रभावित होना, और तुम यदि प्रभावित नहीं हो तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता है। मुझे दुखी करके बताओ, बोलो क्या करना है, आप करो मेरे को दुखी, हम कर सकते हैं आपको दुखी क्या आप मुझे दुखी करके बताओ क्या करोगे आप, दुखी करने के नाम पर छीन लेंगे, मारना पीटना शुरू करेंगे, कुछ गालियां आप शब्द देना शुरू करेंगे, और क्या कर सकते हैं, कुछ निंदा आलोचना करेंगे, कुछ बुराई करेंगे। लेकिन सुनो, मैं सुखी और दुखी होने का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं देता, इसका रिमोट कंट्रोल मेरे पास में है, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी नहीं कर सकती। मैं अपने आप ही दुखी होता हूँ और अपने आप ही सुखी होता हूँ। सर पे डंडे मारो, दुखी होगा कि नहीं होगा बताओ, दुखी होगा कि नहीं होगा, सर पे डंडे पड़े तो। आपको मालूम कीचक, कीचक का नाम सुना है आपने, हिस्ट्री में एक कीचक नाम का एक व्यक्ति था, वो द्रौपदी के साथ में व्यभिचार करने का भाव उसके मन में आया था, सुनिए कहानी आपने। जो पांच पांडव थे उन पांच पांडवों को अज्ञातवास दे दिया गया था, गुप्तवास अज्ञातवास में 12 वर्ष का अज्ञातवास, छिप करके रहोगे आप जंगलों में, जहां भी आपको रहना हो 12 वर्ष का, 1 वर्ष का अलग, इस तरह का कुछ जो भी मैटर था, तो छिप करके रहते थे भेद बदल करके। तो किसी जगह पर जाकर के रसोइये का काम करने लगे, सहयोगी का काम, पांचों भाई हलवाई का काम करते थे, कुछ करते थे, सहयोग करते थे, तो द्रौपदी के ऊपर मोहित हो गया कीचक, उसने खोटी दृष्टि की। फिर उसने क्या किया, उसने इसको बुलाया द्रौपदी को प्लानिंग से, द्रौपदी ने शिकायत कर दी भीम से, और उसने बुलाया, बोले कोई बात नहीं, वो बुला रहा है, वो हाथ कहाँ कर ले, समय सब नक्की कर ले फिर देखते हैं वो क्या करता है। समय नक्की कर लिया, स्थान नक्की कर लिया, और द्रौपदी का भेष बनाकर भीम पहुंचा वहां साड़ी पहनकर, क्या, और जैसे ही कीचक ने कुछ खोटी वृत्ति करने का प्रयास किया, छूने का पकड़ने का प्रयास किया, और उसके इतने डंडे मारे, इतने डंडे मारे, इतने मुक्के मारे कि महेंद्र भाई मुक्के खाते खाते उसे भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन हो गया। सच्ची सच्ची घटना है, सम्यक दृष्टि हो गया, वो प्रथमानुज कह रहा है, बाहर में डंडे पड़ रहे हैं और अंदर में भेद विज्ञान चल रहा है, बाहर में मुक्के पड़ रहे हैं और अंदर में भेद विज्ञान चल रहा है, अपनी विकारी वृत्ति के साथ में भी भेद विज्ञान चल रहा है, और बाहर में शरीर के साथ बनने वाली परिस्थिति के साथ भी भेद विज्ञान चल रहा है, और अंदर में ये धारा बह रही है कि ओहो ये काम मेरे द्वारा करना योग्य नहीं था, ये जो वृत्ति थी कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, ये एक समय की पर्याय मात्र थी, मैं तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञान भगवान आत्मा हूँ, बाहर में डंडे पड़ रहे हैं और अंदर में भेद विज्ञान की धारा चल रही है, और सम्यक दर्शन हो गया। और सुनो, सम्यक दर्शन होते ही क्या हुआ, बाहर में पिटता हुआ दिख रहा है और अंदर में अतिंद्रिय आनंद का स्वाद ले रहा है, समझ में आ रही है बात आपको कुछ, इसका मतलब बाहरी तकलीफ तकलीफ नहीं होती, बाहरी तकलीफ के काल में भी अंदर भेद विज्ञान करके अतिंद्रिय आनंद का स्वाद लिया जा सकता है, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, पर पे नहीं, अपने आप पर निर्भर कर रहा है। तो बात क्या चल रही थी अपनी, पुद्गल कितने प्रदेशों में रहता है, लोकाकाश में, लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात, सुनना बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ, बड़ा गजब का प्रकरण है, बहुत गजब का विषय है, क्या कह रहे हैं, लोकाकाश के प्रदेश कितने, बोले असंख्यात, अनंत है क्या, असंख्यात है क्या, हाँ ये मार्मिक बिंदु है, माने लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी, और पुद्गल कितने प्रदेशी, संख्यात, असंख्यात और अनंत, तो पुद्गल रहता कहाँ है, तो लोकाकाश में, तो लोकाकाश में यदि पुद्गल रहता है तो फिर सीधा सीधा का प्रश्न है, अनंत प्रदेशी पुद्गल असंख्यात प्रदेश वाले लोकाकाश में कैसे रहेगा, कौन समझ में आएगा आपको, प्रदेश तो अलग अलग होते, प्रदेश तो एक एक प्रदेश है, तो असंख्यात प्रदेशों में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे रहेगा, ये जो सत्वार सूत्र का पांचवा अध्याय है ना, ये जिसमें आपको बोरियत लग रही है, ये सत्वार सूत्र के पांचवे अध्याय की व्याख्याएं, इसकी टीकाएं, इसके बेस पर साइंस ने कितनी रिसर्च की है आप कल्पना नहीं कर सकते, सारी रिसर्च इन पुद्गलों के ऊपर है, इन पुद्गल की व्याख्याओं के ऊपर, माने ये पुद्गलों के बारे में कैसी कैसी बातें कहते हैं, अनंत प्रदेश ही पुद्गल असंख्यात प्रदेशों में आ जाए, तो जवाब दिया आचार्यों ने उस बात का, पुद्गलों में सूक्ष्म रूप से परिणमन करने की सामर्थ्य है, और इस शक्ति की वजह से वो असंख्यात प्रदेशी पुद्गल भी एक प्रदेश में आ सकता है, इतना ही नहीं, इस लोक के सारे पुद्गल परमाणु, अर्थित इस तीन लोक में जितने पुद्गल परमाणु हैं, आचार्यों के कथन है, मैं प्रमाण निकाल निकाल करके बतला सकता हूँ, इस टॉपिक के ऊपर मैंने लेख लिखा बहुत बड़ा, उसमें मैंने 53 शास्त्रों के प्रमाण दिए, 53 रेफरेंस उस आर्टिकल में, उन्होंने इतनी इतनी बातें निकाल निकाल के, लोकाकाश में जितने पुद्गल परमाणु हैं, सारे पुद्गल परमाणु यदि सूक्ष्म रीति से परिणमन करे तो लोकाकाश के इस प्रदेश पर आ सकते हैं, बोलो,
ये
पुद्गल की ताकत है। काव्य अपूर्व जिस दे पुद्गल दवस्तरी शक्ति, पुद्गलों की ऐसी कुछ अपूर्व शक्ति है, कंप्रेस होने की शक्ति है। समझ रहे हैं आप कैसे कंप्रेस कर दिया गया? ये सब क्या है, ये बतलाओ मेरे को, ये कहाँ से हो रही है रिसर्च? आज के देखो 13 बाइट गीगा बाइट ये तो कुछ एग्जांपल थे नहीं उस जमाने में। कैसे कैसे काम हो रहे हैं, ये सब किस तरह से आ रही है ये चीजें? मैं यदि इसको आपको विस्तार करके बतलाऊं तो आपको वो बातें खोल करके सामने आएगी। प्रैक्टिकल है ये तो महसूस कर ही रहे हैं आप। जैसे पहले सीडी आती थी, सबसे पहले सीडी से पहले तो ग्रामोफोन चलता था, ग्रामोफोन के बाद में वो रील वाली कैसे, फिर उसके बाद में सीडी आ गई, सीडी से पहले सीडी आई, डीवीडी आ गई, फिर जिप आ गई, पेन ड्राइव आ गई। और पेन ड्राइव आज भी आपके घरों में पड़ी होगी, 1 GB की पेन ड्राइव।
256 GB
बोलो, इतनी बड़ी,
इतनी बहुत वजनदार होगी।
20 क्या चीज, MB मेगाबाइट की, 20 MB इतनी बड़ी क्या? अब आप सोचे जरा। और उसके बाद में 1 GB की आ गई, 2 GB की, 32 GB की, 64, 256, 512 तक की भी आ रही है अभी, फिर भी 13 बाइट आ गई है, 1000 GB। इसका क्या हो रहा है, ये इतने से साइज घटता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है, कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। 4 GB की फाइल अभी प्रवेश भाई को दी, और कितनी कर दी, बोले 40 MB में। क्या हुआ, क्या कम कर दिया आपने, मेरे वीडियो में से क्या काट दिया आपने? बोले बोले कुछ नहीं कटा है, कुछ नहीं कटा है, क्या किया आपने, कुछ भी नहीं कटा है। फिर वॉल्यूम कम कर दिया क्या, कि नहीं। तो पिक्चर छोटा कर दिया क्या, नहीं। तो वीडियो की साइज कम हो गई क्या, कि नहीं। क्या कम क्या हुआ ये बतलाओ, क्या क्या कंप्रेस हुआ उसमें, कंप्रेस क्या हुआ? जो पुद्गल परमाणु ज्यादा स्पेस घेर रहे थे, उन पुद्गल परमाणुओं में और ज्यादा कंप्रेसर वो सघन हो गए और कम एरिया में आ गए, वही पुद्गल परमाणु सेम। सुनो, अन्योन्या भाव जानते हैं आप क्या होता है पुद्गलों का? अभाव पढ़े हैं आपने कभी? 4 अभाव हैं?
4 अभाव,
एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, वो अत्यंत अभाव कहलाता है। 4 प्रकार के होते हैं अभाव। मेरे कुछ वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे आपको, जिसमें 4 अभाव कुछ स्पेशल प्रकरण है, बहुत मार्मिक बिंदु है। 4 अभाव के 5-7 लेक्चर महेंद्र भाई सुन लो ना, आपको वस्तु स्वतंत्रता का ऐसा भान हो यार, ये क्या प्रकरण है ये 4 अभाव का। राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव, अत्यंत अभाव, ये 4 ही है। तो इसमें जो अन्योन्य भाव है वो पुद्गल परमाणुओं में लगता है, एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु में अभाव है। आपने जो कंप्रेस कर दिया है उसमें जितने पुद्गल परमाणु हैं, एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु में प्रभाव नहीं डालता है। ये 5वां अध्याय पढ़ा रहा हूँ पुद्गल द्रव्य के बारे में आपको, समझ में आ रही है बात? एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु में बदलता नहीं है, इफेक्ट नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं करता है। बोलो, ऐसी है स्थिति। 1 TB के अंदर क्या क्या मटेरियल हो सकता है? मुकुंद भाई क्या क्या डाल रखा है आपने, ऑडियो वीडियो एनसाइक्लोपीडिया आ जाता है, बुक्स भी आ जाती है, सॉन्ग्स भी आ जाते हैं, भजन भी आ जाते हैं, फोटोज भी आ जाएंगी और वीडियो आ जाएंगे उसके अंदर, हर चीज आ जाती है। फिर कभी ऐसा तो नहीं होता कि वो उसके अंदर यदि आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते सत्वार सूत्र पढ़ते पढ़ते उसके अंदर कहीं आत्मसिद्धि की कोई श्लोक आ जाता हो, एक पेज में दूसरा पेज, एक लाइन में दूसरे लाइन, एक प्रवचन चलते चलते उसमें कोई दूसरा घुस जाता हो, क्यों नहीं होता ऐसा? अन्य अभाव पुद्गलों की शक्ति है, ये पावर है पुद्गलों की। आज के 100 साल पहले तक ये जो ग्रंथ उपलब्ध थे, आज भी जो उपलब्ध हैं ग्रंथ, उन सभी ग्रंथों में इन बातों को समझाने के लिए कैसे उदाहरण दिए मालूम? उसने उदाहरण दिए इत्र का। उसमें परमाणु कंप्रेस होकर के इतनी सी इत्र सेंट परफ्यूम, उसका एग्जांपल दिया। उस परफ्यूम की इतनी सी शीशी में, और जो पुराने जमाने में होते ऐसे आप लगा रूई लगाते थे, लोग कान में लगा लेते थे, आजकल उस तरह का जमाना नहीं है, पहले पहले ऐसा बहुत होता था। तो वो इतनी सी चीज है, अभी उसको इतनी सी चीज में जो परमाणु है, उन परमाणुओं का ढक्कन खोलो तो उसके जो परमाणु थे ये पूरे के पूरे परमाणु पूरे महल में पूरे हॉल में फैल गए, सब जगह सुगंध आने लगी। ये क्या हुआ? वो परमाणु कितने इतने परमाणु है उसमें कि पूरे महल में के वो सारे के सारे परमाणु कंप्रेस हुए थे एक इतनी से परफ्यूम की बोतल में आ गए, छोटी सी बोतल में। ऐसे उदाहरण दिए उन्होंने, बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल दिए, जपा पुष्प का और पुष्प का पुष्प की सुगंधी का, ऐसे एग्जाम्पल देकर के उन बातों को समझाया है। ये पुद्गल की शक्ति है। तो कहने का मतलब ये है पुद्गल कंप्रेस होकर कम एरिया में रह सकते हैं, एक सुई की नोक पर अनंत अनंत पुद्गल परमाणु आ जाए, इतनी ताकत है पुद्गलों में, एक सुई की नोक पर अनंत पुद्गल परमाणु। तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों पर अनंत पुद्गल परमाणु आ जा गए हैं, इसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, हमें लगता है आश्चर्य ऐसा क्योंकि हमें पुद्गलों की सामर्थ्य का पता नहीं है, हमें पुद्गलों की पावर का पता नहीं है। आप सोचिए जब ये अचेतन पुद्गल इतना पावरफुल हो सकता है तो चेतना वाला चेतन कितना पावरफुल होगा?
प्रदेश
में बहुत सारे, हाँ रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। पुद्गल एक प्रदेशी है, एक उससे कम नहीं है, पुद्गल एक प्रदेशी से कम नहीं है, ध्यान देना। इंडिविजुअल एक पुद्गल परमाणु को मिनिमम रहने के लिए एक प्रदेश चाहिए, लेकिन जिस एक प्रदेश पर एक पुद्गल परमाणु है उसी एक प्रदेश पर उसमें अवगाहना इतनी है कि दूसरा पुद्गल परमाणु भी उसी पे आ जाए तो उसी में रह लेगा, तीसरा पुद्गल परमाणु भी उसी में आ जाए तो उसी में रह लेगा, चौथा पुद्गल परमाणु भी उसी में आ जाए तो उसी में रह लेगा। समझ में आ रही है बात? इसको समझाने के लिए कई ऐसे एग्जांपल आजकल लौकिक में भी मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत इस तरह के प्रायोरिटी के आधार पर देने लग गए हैं। एक गिलास, उस गिलास में छोटे छोटे से हमने पत्थर डाले और भर दिया उसे, बतलाओ इसमें जगह है या नहीं, गिलास पूरा भरा हुआ है, इसमें जगह है या नहीं? है जगह उसमें। अब उसमें हमने रेत भर दी क्या पूरे गिलास में, अब बिल्कुल जगह नहीं, अब तो फुल हो गया, अब तो जगह नहीं है, अब जगह है या नहीं है बताओ? अभी भी जगह है उसमें। कितनी जगह है? तो उसमें पानी डाल दूं उतना ही एक गिलास पानी उसमें समा जाएगा, बोलो? एक गिलास पानी उसमें समा गया, अब तो फुल हो गया, अब थोड़ा बहुत भी डालो तो बाहर निकलता है पानी, अब तो जगह नहीं है, बोलो मुकुंद भाई? अभी भी जगह है कि क्या क्या डाल सकते हैं उसमें? कि आपके जो ऑल पिन है ना सुई, वो डालो उसमें, क्या डालते चले जाओ, हजारों लाखों सुइयां उसमें डाली जा सकती है, उसमें आ जाएंगी। ऐसे उदाहरण दिए शास्त्रकारों ने उस स्पेस को बतलाने के लिए, जिस स्पेस को आप समझ रहे हैं कि ये ऑक्यूपाइड हो गया, उसी स्पेस में और जगह और आ सकते हैं, और आ सकते हैं, और आ सकते हैं, उसमें और कुछ आ सकते हैं। ये ऐसा है, दूसरे पुद्गल परमाणु का भी उसी प्रदेश में अवगाह हो सकता है, इसीलिए तो आकाश के एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु आ सकते हैं। जीव में भी अवगाहना है, जीव के साथ भी होता है, लेकिन मिनिमम जीव को रहने के लिए असंख्यात प्रदेश चाहिए, ये प्रॉब्लम है। माने जीव मिनिमम से मिनिमम असंख्यात में रहेगा, फिर दूसरा जीव भी उन्हीं असंख्यात में रह लेगा, तीसरा जीव भी उन्हीं असंख्यात में रह लेगा। तो जिन असंख्यात प्रदेशों में एक जीव है उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में अनंत जीव रह सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो स्पेस कितना रहेगा, बोले असंख्यात प्रदेश। पॉइंट समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्या कह रहे हैं? ये सारी बातें यहाँ प्रदेशों के संदर्भ में कही जा रही है।
दोनों
कह सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, लोकाकाश में जिन प्रदेशों पर उद्गल परमाणु हैं, उन्हीं प्रदेशों पर जीव भी है। तब आपने दो कहा, मैं कह रहा हूँ उन्हीं प्रदेशों पर धर्म द्रव्य भी है, उन्हीं प्रदेशों पर अधर्म द्रव्य भी है, उन्हीं प्रदेशों पर कालाणु भी है, उन्हीं प्रदेशों पर सब है उनके ऊपर। आकाश सही, आकाश के प्रदेशों की तो चर्चा ही चल रही है। तो मैंने आकाश में अवगाहना नाम की शक्ति है, कार्तिक की अनुप्रेक्षा में तो एक प्रयोग इस तरह का किया, उसने ऐसा बतलाया कि आप नहीं, जीव की भी शक्ति, जीव में भी अवगाहना है, धर्म द्रव्य भी अवगाहना दे रहा है। यदि वो अवगाहना न देवे तो फिर जहाँ धर्म द्रव्य वहाँ दूसरी चीज कैसे आ सकती है, उसमें भी अवगाहना नाम का गुण है। ये कुछ प्रकरण यहाँ जो मैंने बतलाया है, ये सारी बातें लगभग मोटे मोटे तौर पर आपको बतला दी गई इनके प्रदेशों के संदर्भ में। असंख्य प्रदेश धर्माधर्म जीवा नाम हो गया, संख्या असंख्य के पुद्गला नाम, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल अणु हो, माने न अणु, अणु संख्यात प्रदेशी नहीं है, क्योंकि संख्यात शब्द का प्रयोग टू और टू से ज्यादा के लिए होता है, मोर देन टू वो कहलाता है संख्यात। तो अणु तो एक ही प्रदेशी है, इसलिए कहा न अणु, अणु सिर्फ एक प्रदेशी है, प्रदेशी नहीं है। रहते कहाँ है, लोकाकाशे अवगा है, लोकाकाश में रहते हैं। धर्म अधर्म रिक्त में, धर्म अधर्म द्रव्य कहाँ है, बोले तिल में तेल की तरह खुली में भरे हुए हैं, धर्म अधर्म रिक्त में, धर्म अधर्म द्रव्य तिल में तेल की तरह पूरे लोकाकाश में भरे हुए। कृष्ण शब्द जो दिया है ना, कृष्ण कृष्ण इसका अर्थ क्या है, तिल में तेल की तरह है, एवरीवेयर हर जगह पर है वो, ऐसा कहना चाहते हैं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य भी, फिर एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गला नाम, क्या एक प्रदेशादिशु भाज्य पुद्गला नाम, माने आकाश में कितना एरिया घेर रहा है पुद्गल, बोले एक प्रदेश भी घेर रहे हैं पुद्गल, कुछ पुद्गल दो प्रदेश भी घेर रहे हैं, कुछ पुद्गल तीन प्रदेश भी घेर रहे हैं, और ऐसा विभाजित करते हुए महास्कंद संपूर्ण लोकाकाश को घेर रहा है। एक प्रदेश आदिशु भाज्य, असंख्य भागादिशु जीवा नाम, जीव कितने प्रदेश घेर रहा है, असंख्य भाग मिनिमम। ये थोड़ी मार्मिक चर्चा है, ये चर्चा कर थोड़ा विस्तार से करता हूँ, देखो आपके बीच में थोड़ा सा स्वरूप समझ में आएगा। असंख्येय भागादिशु जीवानाम, जीव असंख्यात में भाग में रहता है, किसके असंख्यात में भाग में रहता है, लोक के असंख्यात में भाग में, इसका मतलब जीव को मिनिमम रहने के लिए असंख्यात प्रदेश चाहिए। क्या कहा, कितने जगह चाहिए जीव को रहने के लिए, असंख्यात प्रदेश। वो असंख्यात प्रदेश कितने कितना एरिया होगा, मतलब सुई जितना भी हो सकता है, एक मिडिल के टॉप पॉइंट की बात करें अपन, इतना भी हो सकता है असंख्यात प्रदेश, इतने एरिया के अंदर भी रह सकते हैं, समझने की कोशिश करना, इतने एरिया में भी जीव रह सकता है। और यदि उसका विस्तार हो उस जीव का, तो वो पूरे लोकाकाश तक भी रह सकता है। केवली समुद्घात, लोकपूरण नाम के केवली समुद्घात की अपेक्षा से, समुद्घात सात प्रकार के हैं, उनमें एक है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात चार प्रकार के हैं। उनमें एक लोकपूरण नाम का केवली समुद्घात, उसमें आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैलते हैं। तो समझ में आ रही है? इसके लिए 16 नंबर का सूत्र दिया आगे, पहले वो सूत्र देखो फिर बात करता हूँ आपके बीच में। सूत्र क्या दिया है पढ़ो साहब, सूत्र पढ़ो क्या दिया है। सर्पाभ्याम प्रदीपवत प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत दीपक के समान प्रदेशों का संहार के समान। ये चींटी के शरीर में गया, चींटी जितना हाथी के शरीर में आया, हाथी जितना, और डायनासोर के शरीर में चला गया, डायनासोर जितना, एलिफेंट के शरीर में उतना हो गया, और छिपकली के शरीर में आत्मा कितना रहेगा, छिपकली की बॉडी आकार का, और मच्छर के शरीर में गया तो सतीश भाई मच्छर के शरीर में गया आत्मा, और आत्मा की साइज कितनी होगी, मच्छर के शरीर बराबर, और हमारे हमारे आत्मा की साइज कितनी है, हमारे शरीर बराबर। तो जितनी शरीर की साइज है उतना होता है। इसके लिए एग्जांपल दिया प्रदीपवत, जस्ट लाइक दीपक, दीपक के समान शरीर की साइज के हिसाब से घटता बढ़ता रहेगा। हमारा जन्म हुआ था उस समय आत्मा की साइज कितनी थी, कि जन्म के समय शरीर की साइज जितनी थी, उसके बाद में शरीर की साइज बढ़ती चले गई, हम 2 फीट के हो गए, तो आत्मा कितना था अंदर, बोले 2 फीट में फैला हुआ। फिर हम 4 फीट के हो गए तो आत्मा कितना था अंदर, 4 फीट हो गया, तो वो और बड़े हो गए तो आत्मा कितना, जैसे जैसे शरीर की साइज बढ़ती गई, 5 फीट के, 5.25 फीट के, 5.5 फीट के, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 8 इंच, जितना जितना उतनी उतनी आत्मा की साइज बढ़ती गई। और उसमें भी और लगाओ आप, मोटापा बढ़ता चला गया तो आत्मा की भी थिकनेस बढ़ती चले गई। बताओ यहाँ पर सबसे बड़ी आत्मा किसकी है, सबसे बड़ी आत्मा किसकी है, सबसे बड़ी गिरीश भाई की आत्मा ज्यादा बड़ी नहीं है इस शरीर में, कि नहीं है। ये आत्मा की साइज कह तो सकते हो आप कहने में, तो प्रदेशों की दृष्टि से देखो तो सबके प्रदेश समान हैं, बराबर हैं, किसी के प्रदेश कम ज्यादा नहीं। प्रदेशों की दृष्टि से देखो तो कोई छोटा बड़ा नहीं है भाई साहब। इससे कुछ विशेष बात समझ में आती है क्या आपको? यदि आत्मा के छोटे और बड़े पन से सुख में फर्क पड़ता होता, आनंद में फर्क पड़ता होता, तो फिर महावीर भगवान आए 500 धनुष का, अब आदिनाथ भगवान का तो इतना बड़ा आत्मा, अनंत काल तक 500 धनुष का ही रहेगा, और महावीर भगवान का आत्मा अनंत काल तक 7 हाथ का ही रहेगा। अब क्या करो, और पार्श्वनाथ भगवान का 9 हाथ का। अब जिसका आत्मा छोटा है वो ध्यान कम कर पाएगा, इससे से मैं क्या करूंगा, इससे से मैं बोर हो जाता हूँ, इससे से मैं, जो बड़ा है बहुत आराम से रहता है। क्या लगता है आपको भाई साहब, फर्क नहीं है ये बतलाना चाह रहे हैं आप? 3.5 हाथ का आत्मा और 5.25 धनुष का आत्मा, 2 साइज है सिद्धा लेने, 2 साइज नहीं है मिनिमम और मैक्सिमम बतलाइए, तो इनके बीच में असंख्यात साइज हो सकती है। 3.5 फीट से लेकर 5.25 धनुष तक के आत्मा का आकार हो सकता है सिद्धा लेने। सबकी आत्मा की साइज अलग अलग, लेकिन उसके बावजूद भी आत्मा में गुण बोले सबके समान, बोले आनंद सबका समान, योग्यता सबकी समान, शक्तियां सबकी एक जैसी, क्या बात बतलाना चाह रहे हैं? बोले जैसे सबका आत्मा है वैसे मेरा आत्मा है। प्रदेशों की दृष्टि से बात कर रहे हैं, प्रदेश संहार सर्पाभ्याम प्रदीप वत दीपक के समान, दीपक के समान कह के क्या कह दिया, जिस तरह से दीपक की लौ, दीपक का प्रकाश अपने बाउंड्री के हिसाब से फैलता है, उसी तरह से आत्मा भी शरीर की बाउंड्री के हिसाब से फैलता है। दीपक को एक छोटे बर्तन में रखो तो कितना प्रकाश फैलेगा उसका, उस बर्तन जितना। बर्तन को उल्टा रखो उसके ऊपर, दीपक जल रहा है, बर्तन को हमने उसके ऊपर उल्टा रखा तो दीपक का प्रकाश इस छोटे से बर्तन में फैल गया। भगोनी रखी तो भगोनी में फैल गया, उसके ऊपर यदि बाल्टी रखी बाल्टी जितना फैल गया, और उसके ऊपर यदि हमने घड़ा रख दिया तो घड़े के शेप में फैल गया। शेप भी उसी तरह का होता है, आपने घड़ा ऊपर रखा है तो प्रकाश घड़े के शेप में, आपने बाल्टी रखी है तो प्रकाश बाल्टी के शेप में। तो हमारे आत्मा का शेप कितना है रमेश भाई, आपके आत्मा का शेप कैसा, जिस शेप में आप बैठे हुए हैं उस तरह का उसी शेप में रहेगा। और जिस तरह हमने हाथ ऐसे किया ऊपर तो आत्मा भी इसी शेप में हो गया, जिस समय हाथ ऐसे किया तो आत्मा का शेप बदल गया। समझ रहे हैं आप, हर क्षण आत्मा का शेप बदलता रहता है, पांचों श्वास के काल में आत्मा का शेप बदल रहा है। इतना सब कुछ शेप बदलते हुए भी आत्मा के गुण धर्म शक्तियां और प्रदेशों में फर्क नहीं पड़ता, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए प्रदेश संघार विसर्पाभ्याम प्रदीप वत् कहा, और सुनो असमूह दो व्यवहारो नित्य नैरो असंख्य देश होगा। द्रव्य संग्रह की एक गाथा है, समुद्र घात के काल में बाहर भी चला जाता है। कुछ पूछ रहे हैं आपका इनविजिबल है बट शेप है उसकी क्या, हाँ निराकार नहीं है, निराकार नहीं है, अदृश्य है, आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन आत्मा का आकार है। कौन से आकार में आपका आत्मा बोलो,
क्या रहता है
ये शरीर में रहेगा,
शरीर में
तो बिगड़े गति में कैसा आकार होता होगा, हाथी के शरीर में हाथी जैसा हो गया, सही बात है, बिगड़े गति में कैसा आकार होगा। बिगड़े गति मतलब क्या होता है, एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में ट्रेवलिंग करने वाला टाइम, यहाँ से डेथ हो गई ठीक है, दूसरे भाव में जाकर के जन्म लेना है, यहाँ तो मौत हो गई, ये बॉडी से छूट गई है, अब आत्मा अकेला जाएगा बिना शरीर का, अब दूसरे शरीर में जाकर के जन्म लेगा, दूसरा शरीर बनाएगा वहां जाकर के। तो जो रास्ते में एक समय दो समय और तीन समय तक ये आत्मा जो ट्रेवल करेगा वो ट्रेवलिंग का टाइम कहलाता है विग्रह गति, उस ट्रेवलिंग को विग्रह गति कहते हैं, इधर से उधर जो गमन हुआ। अब उस विग्रह गति में आत्मा का शेप कैसा होता है,
उसी का ही तो शेप लेगा ना,
उसका शेप तो वहाँ जाकर के लेगा, वहाँ जाकर के लेगा एक दो तीन समय तक जिस शरीर को छोड़ा है। नहीं नहीं नहीं, जिस शरीर को छोड़ा है उस शरीर का आकार, जिस शरीर को छोड़ा है वो आकार, और उस शरीर में भी शरीर की लास्ट पोजीशन का आकार। या 100% यही कह रहा हूँ मैं, हाँ खड़गासन होंगे पद्मासन, जिस शेप में होगा, मान लीजिए मैं ऐसे मेरी बैठी तो इस शेप में आत्मा इसी शेप में निकलेगा, इसी शेप में निकल करके जाएगा, ट्रेवलिंग करेगा एक दो तीन समय चौथे समय में जाकर के जन्म होगा, बैठे बैठे ऐसे बैठे बैठे मरण हुआ, ऐसे बैठे बैठे जाएगा। किसी व्यक्ति का खड़े खड़े हुआ तो बिल्कुल जैसे खड़ा था उसी शेप में, लेटा था पड़ा था जो भी आकार होगा उसी आकार में। इतनी देर की यही तो समझा रहा हूँ, इतनी देर की यही तो समझा रहा हूँ,
in between. Between, he said, the one said, the other said, my nature is that.
अरे श्री मरी गए तो श्री ना शेख में ये आत्मा विद्या गति में जैसे अनेक जो हसी ना शरीर में जवान हो रहा तो मुझे क्या देखने मतलब ये हसी ना शेख ले
या बिल्कुल तो वहाँ जाकर के एकदम हसी की शेप में नहीं होगा. डे बाय डे गर्भ में गया है तो डे बाय डे जैसा जैसा बढ़ेगा वैसा वैसा आत्मा भी बढ़ता चला जाएगा, उसके प्रदेश भी बढ़ते चले जाएंगे. हाँ, वो बताऊंगी. अरे यार सब छूट गया, ये तो बंद हो गया था बीच में. कितनी देर हो गई बंद हो गया, ज्यादा हो गया टाइम. चलो कोई बात नहीं, बीच में जितनी चर्चा हुई अपनी वो सब ये रिकॉर्डिंग बंद होने से कुछ छूट गई, छूट गई छूट गई, क्या कर सकते हैं. चलो कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं छोड़ो उसको. तो अभी क्या कह रहे हैं हम आपसे, आकाश के आत्मा के प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं. आत्मा का शेप और आकार क्या होगा, तो बोले विग्रह गति में आत्मा का आकार, अंतिम जो शरीर का शेप छोड़ा था वो आकार विग्रह गति में होता है. कौन समझ में आया, बोलिए.
ये जो आत्मा की जो हम बात इतनी कर रहे हैं तो एक ये भी सोचने लायक है कि एक निगोज का जो शरीर है पोटेटो है उसमें कितने आत्मा रहते हैं तो उनका भी शरीर तो उसमें तो कितने आत्मा आते हो किसी को बचा होगा.
सही बात है, अनंत है जी.
पोटेटो खाते हैं,
पोटेटो में अनंत है जी, अनंत शरीर है उसमें, और अनंत शरीर में एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव भी है. ऐसा भी है, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण. बोलो कौन कौन खाता है, क्या पूछना है, छोड़ो तो मतलब नहीं है. क्या जीव में इस तरह की कैपेसिटी है, पुद्गल में है ना अलग अलग होकर के. हाँ तो ये पुद्गलों में जिस तरह से कंप्रेस होकर के रहने की कैपेसिटी है उस तरह से जीव में भी संकोच और विस्तार करने की कैपेसिटी है. प्रदेश संघार विसर्पाभ्याम की बात की हमने, संकोच हो जाता है विस्तार हो जाता है फैलाव हो जाता है. अभी पोटेटो की बात कह करके तो आप सोच नहीं सकते कितने जीव हैं. यानी व्यक्ति छू नहीं सकता पोटेटो, इतने अनंत जीव हैं, इतने अनंत जीव आप सोच नहीं सकते. उसमें हमारे भूतकाल के अनंत जन्मों के अनंत माता पिता हैं, अपने माँ बाप को खा रहे हैं आप, आपको पता है भूतकाल के अनंत जन्मों के अनंत बच्चे हैं अपने, उसमें हम कैसे खा सकते हैं उसको. कई लोग ऐसे डेढ़ होशियार मिलते हैं, वो ये कहते हैं पंडित जी एक बात बताओ, आलू में जो जीव है वो एक इंद्रिय है दो इंद्रिय है पंचेंद्रिय है कौन से हैं. हमने कहा एक इंद्रिय, बोले एक इंद्रिय है तो उसमें पृथ्वी का एक है, जल का एक है, अग्नि का एक है, वायु का एक है, वनस्पति का एक है, निगोद है कौन है. हमने कहा निगोद, बोले निगोदिया जीवों का जन्म मरण कितना होता है. तो हमने कहा समाप्त के 18वें भाग. बोले आलू यदि यहाँ पड़ा हुआ है तो उसके अंदर सांप के 18वें भाग जन्म मरण कर रहे हैं कि नहीं. मैंने कहा कर रहे हैं. बोले हम नहीं खाएंगे तो भी कर रहे हैं ना, कि कर रहे हैं. तो फिर हम खाएंगे तो चाहे नहीं खाएं तो अपने आप ही मर रहे हैं, अब इसमें क्या फर्क पड़ गया. लोग हैं कोई बात करते
आलू खाने का रस है,
ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं लोग. फिर तो मैं खा लूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, मैंने यदि आलू खा लिया तो उसमें फर्क क्या पड़ गया, अपने आप ही मरेंगे वो तो. ठीक है अपने आप मरेंगे, ये बात तो सही है तेरी, मरेंगे तो वो अपने आप ही, लेकिन वो मरेंगे कहाँ, वो जन्मेंगे कहाँ. तू अपने पेट को मुर्दा घर बनाने के लिए तैयार है, तू अपने घर को शमशान भूमि बनाने के लिए तैयार है, अपने घर को जगह थोड़ी सी कम है यहाँ कहाँ पे आपके जो है ना शमशान में कितनी जगह की कमी रहती है, कितने लगे रहते हैं यहाँ आपके. क्रिश्चियन के पत्थर लगे रहते हैं। हाँ जगह कहाँ से लेकर के आए आप? जगह तो कम पड़ती है ना, तो आपके घर में बना लेंगे सर। हे क्या बात करते हो तुम, तुम अपने घर को बनाने को तैयार नहीं है और अपने पेट को मुर्दा घर बनाना चाहते हो? सोचो जरा गंभीर भाव से सोचना इस मुद्दे पर। अनंत जीव है, इतने से एरिया में रह रहे, साधारण वनस्पति जीव कहलाते हैं वो। मकान एक और मालिक अनंत, अनंत मालिक है। इसलिए भाई कई लोगों को देख करके ऐसा लगता है इनका आलू के साथ में जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। अनंत काल इन्होंने आलू में बिताया, बाहर निकले तो आलू को खाया और मरेंगे तो फिर आलू में जाके पैदा हो जाएंगे। ऐसा रिश्ता है हमारा, समझो सुधारो भाई अपनी लाइफ को। हम बात कर रहे थे जीव के प्रदेशों के संदर्भ में, जीव कितने एरिया में रहता है, असंख्यात प्रदेशों में रहता है। असंख्यात प्रदेश कितने होंगे, बोले लोकाकाश के एरिया की अपेक्षा से बात करेंगे, आकाश की अपेक्षा से बात करेंगे ना। तो आकाश की अपेक्षा से वो छोटे से हिस्से में रहे तो भी असंख्यात, संख्या नहीं बढ़ रही है उसकी। बड़े एरिया में रहे तो भी उतने ही असंख्यात, और बड़े एरिया में रहे तो भी उतने ही असंख्यात, और पूरे लोक में रहे तो भी उतने ही असंख्यात। ये क्या है चक्कर, कुछ समझ रहे हैं आप? हम कुछ बात कह रहे हैं आपसे। पूरे लोकाकाश में एक जीव, तो यार ये समझ में नहीं आ रही, जब इतने में है तो इतने से में आता होगा तो फोल्ड हो जाता होगा, कुछ समेट करके रख देते होंगे। एक साड़ी है मान लो, वो साड़ी 5 मीटर की है, 6 मीटर की है वो साड़ी, तो कितनी जगह घेर रही है? 6 मीटर जगह घेर रही है, 6x3 की जगह घेरी ना उसने, 6x2.5 6x3 की जगह उसने घेरी है उस साड़ी ने। अब हमने ये कहा कि उसको कम जगह में रखने के लिए क्या करें, बोले फोल्ड कर दो। फोल्ड कर दिया तो 1x1 के एरिया में आ गई। तो ऐसी आत्मा के एक्चुअल प्रदेशों की संख्या कितनी है, एक्चुअल संख्या कितनी है, संख्या काउंटिंग पूछ रहा हूं मैं, बोलो असंख्यात माने कितना, काउंट नहीं कर सकते, इतना असंख्यात बताओ जिससे एक भी कम एक भी ज्यादा नहीं, बोलो। कुछ याद रखने के लिए बातें, छोटी छोटी सी बातें कह रहा हूँ आत्मा के बारे में। जब आप ध्यान करने के लिए बैठोगे तो आत्मा के बारे में क्या चिंतन करोगे, 5 मिनट में सब्जेक्ट खत्म, फिर आत्मा के बारे में क्या चिंतन चलेगा आपका? असल क्या आपका फिगर बताओ, इतना बताना जिससे एक परमाणु भी कम नहीं हो और जिससे एक परमाणु भी ज्यादा नहीं हो, इतना बताना, बोलो। एक प्रदेश भी कम नहीं हो, एक प्रदेश भी ज्यादा नहीं हो, ऐसी संख्या बताओ, बता सकते हैं आप? ये अलौकिक गणित है भाई साहब, ये जैन दर्शन का गणित है, अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आती ये बातें। एक संत महात्मा बैठे थे, विद्वान थे बहुत, उनकी ख्याति बहुत थी, चारों तरफ फैली हुई, एक नगर में थे। तो एक सज्जन जो बहुत बड़े मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, जानकार थे, उन्होंने मजाक को, नहीं क्या है ये का ज्ञान है इनको, की नॉलेज, एक सवाल दूं तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारे गणित तो बोले करा दो शास्त्रार्थ देख लेंगे, बोले तुमसे कोई प्रश्न पूछे हो तुम जवाब दे सकते हो, एक प्रश्न तुम पूछना जवाब दे सकते हैं कि नहीं, और एक प्रश्न वो पूछेंगे जवाब दे सकते हैं कि नहीं। तो इसने प्रश्न किया और उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से उसका जवाब दे दिया। अब मुनिराज ने कहा कि हमारा प्रश्न, तुम बहुत गणितज्ञ हो ना, संख्याओं से बहुत खेलते हो ना मैथमेटिक्स में, तुम जवाब दो। तो क्या किया, सिर्फ जहाँ बैठे थे वहां मुनिराज ने मिट्टी मिट्टी थी चारों तरफ, अपने हाथ में ऐसे मिट्टी भर ली मक्की ने और पूछा बताओ इसमें कितने परमाणु या कितने कण धूल के हैं, बतलाओ संख्या, तुम बहुत होशियार हो ना बताओ कितने हैं। असंख्यात हैं, अनंत हैं, कोई उसमें लाखों हैं, करोड़ों हैं, ऐसी संख्या है, बोलने लगा। तो पता है मुनिराज ने क्या कहा, कैसे कैसे ऐसा चलेगा अंदाजे से कुछ भी, ऐसी संख्या बतलाओ जिससे एक धूल का कण भी कम नहीं हो और एक धूल का कण भी ज्यादा नहीं हो। इसमें कितने धूल के कण हैं ये बतलाओ, संख्या बताओ, एग्जैक्ट संख्या बतलानी है, एक भी कम नहीं और एक भी ज्यादा नहीं। अरे यार ये क्या पागलपन जवाब है, नहीं कैसे लोकाकाश कहेंगे, सुनो सुनो कितना है ये बतलाओ, इसका जवाब दो। बोले मैं तो जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हार तो तब मानूंगा जब तुम जवाब दे दोगे, ऐसे कैसे हार जाएंगे, ऊंट पटांग कुछ भी प्रश्न करोगे, जवाब तुम दे, तुम्हें देना पड़ेगा। तो मुनिराज ने जवाब दिया, एक मुट्ठी प्रमाण। कितने कितने धूल के कण है बताओ, एक मुट्ठी प्रमाण, उससे एक भी कम नहीं एक भी ज्यादा नहीं। अब हमने पूछा आपसे, अब हिंट दिया हमने आपको, अब हमने पूछा आत्मा के प्रदेशों की संख्या बतलाओ, एक भी कम नहीं और एक भी ज्यादा नहीं, ये अलौकिक गणित है भाई साहब। नहीं नहीं, कितनी संख्या, संख्या कैसे बैठेगी शरीर प्रमाण में, एक संख्या कैसे आएगी, तो जवाब दिया लोकाकाश प्रमाण। लोकाकाश के प्रदेशों की जितनी संख्या है आत्मा के प्रदेशों की उतनी ही संख्या है। समुद्रघात करते हैं तो एक एक प्रदेश पर एक एक प्रदेश आता है, एक एक प्रदेश पर एक एक प्रदेश यदि हो, आकाश के एक प्रदेश पर आत्मा का एक प्रदेश, आकाश के दूसरे प्रदेश पर आत्मा का दूसरा प्रदेश, तो फिर इस आत्मा को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, बोले लोक प्रमाण जगह चाहिए, लोकाकाश प्रमाण। ऐसे जवाब है शास्त्रों में। ये जैन दर्शन का गणित बड़ा अद्भुत होता है, ये अलौकिक गणित की चर्चाएं हैं भाई साहब। मुकुंद भाई समझ में आ रही है आपको बात, ये अलौकिक गणित में आखिर क्या बातें बतलाई गई है, कौन सी चर्चाएं की अलौकिक गणित में, समझ से परे है, आपको समझ में नहीं आएगी ये गणित, आपके समझ में नहीं आता है, बहुत ऊंच पटांग बात मिलेगी आपको, पढ़ोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। जन्म लिया है वो अलग मैटर है, नहीं उससे क्या मतलब है, वो अलग चीज है, वो क्षेत्र परावर्तन की बात है। अभी तो आत्मा की साइज का डिसीजन ले रहे हैं अपन, निर्णय कर रहे हैं आत्मा कितना बड़ा है, आत्मा की साइज कितनी है, वो चर्चा चल रही है अभी तो। वही कुछ समझ में आया क्या, क्या कही हमने, कहे क्या दी हमने बात, अलौकिक गणित की बातें बता रहे थे हम बीच में आपको, ऐसे ऐसे गणित के प्रकरण है, बहुत अद्भुत प्रकरण है, चर्चा करेंगे अपन विस्तार से। उत्कृष्ट दशा, जघन्य दशा, मिनिमम दशा, किसी भी दशा, किसी भी अवस्था, आत्मा के प्रदेशों की संख्या लोक प्रमाण है, बस खत्म। प्रदेशों की संख्या उतनी है, लोकाकाश के बराबर है आत्मा के प्रदेशों की संख्या। आत्मा के बारे में कुछ जानो, आत्मा के बारे में कुछ पढ़ो, अपने आप का परिचय लो, आपका वजन कितना है तो आप फटाफट बता दोगे, आपकी एज कितनी है तो फटाफट बतला दोगे, आपकी साइज कितनी है तो फटाफट बतला दोगे, आपकी कमर का साइज कितना आता है मुकुंद भाई तो फटाफट बतला दोगे, वेस्ट कितनी है। और हमने पूछा आपके आत्मा का साइज कितना है, ये पता नहीं है हमारे को, इसका मतलब बॉडी का साइज तो पता है, ब्लड ग्रुप पता है, शरीर के बारे में सारी बातें बताए तेरे को, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता है। ये कह रहे हैं तू थोड़ी बहुत चर्चा आत्मा के बारे में जान, अपने आप के बारे में जान, क्योंकि निजमा निज बुद्धि था है तो परिभ्रमण चले, लेकिन निज कैसा है इसको समझने के लिए आत्मा को जानना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चर्चाएं अभी की है, कुछ चर्चा अभी हम भोजन के बाद करेंगे, अभी की बात यही था।
समझा।